पृष्ठ संख्या 64, 5 महादेवी वर्मा, 1907 से 1987 ईस्वी। महादेवी वर्मा का नाम छायावादी काव्य धारा के उन कवियों में आता है जिन्होंने द्विवेदी गीन इतिवृत्तात्मक उपदेशात्मकता और शुष्क नैतिकता के स्थान पर भावुक मन की सूक्ष्मतम अति सूक्ष्म अनुभूतियों को मधुर गीतों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की। अपनी अंतर्मुखी मनोवृत्ति तथा नारी सुलभ गहरी भावुकता के कारण उन्हें वेदना लोक के गीले स्वरों की सम्राज्ञी कहा गया। महादेवी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। पढ़ाई के दौरान मैट्रिक परीक्षा में वह प्रांत भर में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद उन्होंने यत्र तत्र चित्र और संगीत कला की भी शिक्षा ली। कालांतर में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या तथा उपकुलपति नियुक्त हुई। इलाहाबाद में ही रहकर उन्होंने बहुत दिनों तक चांद पत्रिका का संपादन किया था। बौद्ध दर्शन से गहरे प्रभावित होने के कारण घर गृहस्थी के जंजाल से दूर रहकर उन्होंने साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। महादेवी जी को गहन पीड़ा और वेदना की अभिव्यक्ति के कारण आधुनिक मीरा कहा जाता है। मध्ययुग में जिस प्रकार कृष्ण की कसक से भरी मीरा की करताल सुनाई देती है, वर्तमान युग में वैसी ही ठेस महादेवी की काव्य वीणा में सुनाई पड़ती है। अप्रहित आराधना की वेदी पर अपनी प्रत्येक सांस न्योछावर कर देने को आतुर महादेवी का समस्त जीवन मंदिर की आरती के समान क्षण क्षण जलकर अपने असीम और अज्ञात प्रियतम का पथ आलोकित करता रहा। यही कारण है कि छायावाद के भीतर आचार्य शुक्ल ने उन्हें सबसे अधिक रहस्यवादी बताया था। कबीर पंत ने उन्हें छायावाद के वसंत वन की सबसे मधुर भावपिकी कहा था। महादेवी वर्मा की कविताओं में दीपक, शलभ, चातक, कोकिल, रजनी, राका, अंधेरा, बदली, बिजली, सावन, निर्झर, कीर, पिंजर आदि शब्द बार बार आते हैं, जिसके माध्यम से वह अपनी घनीभूत पीड़ा को शब्द देना चाहती हैं। असीम प्रियतम से विरह और मिलन की इच्छा धूप छांह की तरह अनेक गीतों में दिखलाई देती है। महादेवी जी के काव्य में जहाँ अहम मैं की प्रधानता है, वहीं उनके गद्य में इदम वह का भाव पूरी ममता और करुणा के साथ प्रकट हुआ है। काव्य कृतियाँ पृष्ठ संख्या 65। महादेवी जी का रचनाकाल 1924 से 1942 तक फैला हुआ है। निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा 1934 ईस्वी और सांधी गीत 1936 ईस्वी उनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। निहार, रश्मि, नीरजा और सांधी गीत की चुनी हुई कविताओं का संकलन उन्होंने यामा 1940 ईस्वी नाम से किया था, जो उनके रचनाक्रम के चार यामों को प्रकट करता है। महादेवी जी को इसी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद उनकी पांचवी काव्य कृति दीपशिखा 1942 का प्रकाशन हुआ। निहार और रश्मि का मूल स्वर जहाँ जीवन का रहस्यवादी दर्शन है, वहीं नीरजा में बौद्धिक अनुभूति की प्रधानता है। सांध्य गीत में रूपक के माध्यम से मिलन आकांक्षा और वियोग की एकांत अनुभूतियाँ हैं। असीम अखंड और अज्ञात प्रियतम के प्राणों में उतार लेने की साधना है। वहीं दीपशिखा में वह निष्काम मंदिर में दीपक के समान जल रही हैं। संधिनी जीवन की सांध्य वेला को उनका एक अन्य काव्य संकलन है। वह वस्तुतः प्रियतम से मिलने का प्रतीक है। महादेवी जी का समस्त साहित्य अपने गहरे रूप में आस्था, उपासना और उत्सर्ग का साहित्य है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांधगीत और दीपशिखा उनकी मंगलमय यात्रा के ज्योतिर्मय चरण चिन्ह हैं। खा गद्य कृतियाँ। महादेवी जी का गद्य उनके काव्य से कम विपुल और महत्वपूर्ण नहीं है। रेखाचित्र, संस्मरण तथा निबंध गद्य की इन विधाओं में उनकी विशेष रुचि रही है। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएँ तथा पथ के साथी जहाँ उनके प्रसिद्ध रेखाचित्र हैं, वहीं मेरा परिवार संस्मरण है। छड़दा तथा साहित्यकार की आस्था महादेवी जी के निबंधों का संकलन है। श्रीमती महादेवी वर्मा पंत की भांति हिंदी के उन भाग्यशाली साहित्यकारों में थी जिन्हें जीवन में अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ। उनकी कृति नीरजा पर सिकसरिया पुरस्कार तो स्मृति की रेखाएं पर द्विवेदी पदक और मंगला प्रसाद परितोषिक, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती भी उन्हें मिला तो यामा कृति पर उन्हें केंद्र सरकार का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से भी उन्हें अलंकृत किया। अभिनंदन ग्रंथ के अतिरिक्त अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया। पृष्ठ संख्या 66। महादेवी जी की कविता का कला पक्ष भी भाव पक्ष के समान ही सूक्ष्म, तरल और उदात्त है। संगीतात्मकता, चित्रात्मकता, अलंकारिकता, माधुर्य, मृष्णता, कोमलता, भावुक कल्पनाशीलता जैसी उनके यहाँ हैं। शब्दावलियों, गीतों के चमत्कार का जैसा प्रवाह उनकी रचनाओं में है, प्रणयी अनुभूतियाँ, विरहजन्य कातरता, मिलनजन्य कामना, करुणा, मैत्री और वेदना का जैसा अंतरलोक रहस्यवाद के झीने पर्दे में उनकी रचनाओं में विद्यमान है, वैसा छायावाद के अन्य कवियों में कहीं नहीं है। निश्चय ही वह आधुनिक हिंदी कविता का वह गौरवपूर्ण अध्याय है जिनसे हिंदी का मस्तक सदैव गर्वोन्नत रहेगा। महादेवी और दीपशिखा। दीपशिखा महादेवी की एक महत्वपूर्ण काव्य कृति है जिसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में सांध्य गीत के प्रकाशन के लगभग 6 वर्ष पश्चात हुआ। डॉक्टर राम रतन भटनागर के अनुसार यूनाइटेड कामा निहार और रश्मि ने महादेवी के रहस्यवादी जीवन दर्शन को विचार भूमि दी। निर्जा में वह बौद्धिकता से ऊपर उठकर अनुभूति की ओर बढ़ी, परंतु वह बौद्धिकता को एकदम छोड़ नहीं सकी। सांध्य गीत में उन्होंने एकदम अनुभूति के सहारे रहस्यात्मक मिलन वियोग के रूपक के माध्यम से जीवन की अविच्छिन्नता, अखंड अविवर्चनीयता तथा महामहिम व्यापकता को उतारने की साधना की है। दीपशिखा में वह साधना पथ पर और भी आगे बढ़ जाती हैं। यूनाइटेड कामा बन। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इस संकलन की कविताओं को अतिशय महत्वपूर्ण बताया है। दीपशिखा का अर्थ है दीपक की लौ। महादेवी के अनुसार जीवन और मरण के इन तूफानी दिनों में रची हुई ये कविताएं ठीक वैसे ही हैं जैसे झंझा और प्रलय के बीच में स्थित मंदिर में जलने वाले निष्कंप दीपशिखा। इस संग्रह में कुल 51 गीत हैं। इसमें सर्वाधिक रचनाओं का विषय दीपक है जो विरह से जलते हुए जीवन घट में आत्मा का प्रतीक है। वास्तव में दीपक की गाथा प्रेमी के प्राणों की गाथा है। इस प्रकार दीपशिखा में कवयित्री ने अनंत सत्ता के प्रति अपना आत्मनिवेदन निवेदित किया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार दीपशिखा की रचनाओं में फारसी क्षमा की तरह इंद्रिय वासना की दाहक ज्वाला नहीं, वरन करुणा के स्निग्ध लौ है जो मधुर मधुर जलती हुई पृथ्वी के लिए आलोक वितरित करती है। दीपशिखा कवित्री के मन की प्रतीक है। इस जलन के पीछे भी अज्ञात प्रिय का संकेत है जो उसे असीम बल और अकंप विश्वास प्रदान करता है। दीपशिखा की विशद भूमिका के अंतिम अनुच्छेद में कहा गया है, यूनाइटेड कामा, दीपशिखा में अविश्वास का कोई कंपन नहीं है। नवीन प्रभात के वैतालिकों के स्वर के साथ पृष्ठ संख्या 67। इसका स्थान रहे ऐसी कामना नहीं पर रात की सघनता को इसकी लौ झेल सके, यह इच्छा तो स्वाभाविक ही रहेगी। यूनाइटेड कामा बन। दीपशिखा में कई महत्वपूर्ण गीतों की सृष्टि हुई है जैसे पंथ होने दो अपरिचित, सब बुझे दीपक जला दू, आज तार मिला चुकी हूँ, कहाँ से आए बादल काले, जब यह दीप थके तब आना, धूप सात तन दीप सी मैं, जो न प्रिय पहचान पाती, आंसुओं के देश में मोम सा तन घुल चुका, फिर तुमने क्यों शूल बिछाए, गूंजती क्यों प्राणवंशी, लौट आओ मलय मारुत के झकोरे, पूछता क्यों शेष कितनी रात, सजल है कितना सबेरा, इत्यादि। इन गीतों में साधिका के अंतरात्मा की पुकार, मिलन जन्य तीव्रता, उत्कंठा, विरह जन्य वेदना, अज्ञात प्रियतम के प्रति समर्पण का भाव, नारी हृदय की कोमल कतार पुकार, लौकिक सीमाओं से परे असीम और अज्ञात तक जाने का भाव सर्वत्र विद्यमान है। यथा दुखव्रती निर्वाण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्रति से तिमिर में शरण वेला। इस प्रकार दीपशिखा में महादेवी जी की साधना अपने उच्चतम शिखर पर है। वह अपनी वेदना अनुभूति को विश्व के कण कण के माध्यम से अनंत के चरणों तक पहुंचाना चाहती है। इन गीतों में कवित्री का कल्पना वैभव भी अपने चरम पर पहुंच गया है। भाषा में चित्रात्मकता तथा लाक्षणिकता के साथ बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत मनोरम बन पड़ा है। लय, तुक, छंद, शब्द, अर्थ गांभीर्य, संगीत विधान आदि सभी दृष्टियों से दीपशिखा का कलात्मक पक्ष अपने परिपूर्ण औदात्त के साथ प्रकट हुआ है, इसमें संदेह नहीं। महादेवी जी ने इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक, श्लेष, व्यतिरेक, विरोधाभास, अनुप्रास, दीप्सा आदि अलंकारों का अत्यंत ही सहज प्रयोग किया है। कोमलकांत पदावली, स्वर और संगीत का जादू उनकी अन्य रचनाओं की भांति यहाँ भी देखा जा सकता है।